ও শান্তি। বাইশ সাত বাপদার কি অফেক্ত বাপদাদা কি অফেক্ত মরলি নষ্ট মোহা বন্নে কি ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিয়া আপনে কো হর এক স্মৃতি স্বরূপ সমঝতে হো স্মৃতি স্বরূপ হো জানে সে স্থিতি ক্যা বন জাতি হ্যায় অর কব বনতি হ্যায় স্মৃতি স্বরূপ তব বনতে হ্যায় জব নষ্ট মোহা হো জাতে হ্যায় তো এসে নষ্ট মোহা স্মৃতি স্বরূপ বনে হো কি অভি विस्मृति स्वरूप हो। स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो? जरूर कोई न कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। तो क्या जो बाप से पहला पहला वायदा किया है की और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, क्या यह पहला वायदा निभाने नहीं आता है? पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आवेंगे? क्या सेकेंड जन्म के राज्य में आना है? जो पहला वायदा नष्ट मोहा होने का निभाते हैं, वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। पहला वायदा कहो वा पहला पाठ कहो वा ज्ञान की पहली बात कहो वा पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो, क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म में मुश्किल लगा? सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना? तो इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही यह है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। पशुओं और मनुष्य आत्मा में मुख्य अंतर यही तो है। तो जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं जो चाहे वह नहीं कर सकती है? तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हों में प्रकृति की पावर है, ईश्वरीय पावर नहीं है। ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो। वाह, आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है, जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। यह बोल मास्टर सर्वशक्तिवान के वा श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं है, साधारण आत्माओं के है। तो क्या अपने को साधारण आत्माएं कहला सकते हो? अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते हो। किसी भी वस्तु से वा किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है वह और यह वस्तुएं, उन्होंने रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? जो भी व्यक्तियां देखते हो उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को वा संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है। जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही कैसे सकते हो, जबकि वह जन्म ही बदल गया तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। वाह, तो यह कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। साधारण रीति से जहाँ जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। तो यहाँ फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों, वा कर्म फिर लौकिक क्यों? तो अब बताओ, नष्ट मोह होना सहज है वा मुश्किल है? मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय अपनी शक्ल नहीं देखते हो। आईना तो मिला हुआ है ना? आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर शिकल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अगर यह देखने का अभ्यास पड़ जाए तो अभ्यास के बाद न चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने के तरफ खींच जाएंगी। जैसे स्थूल में कईयों को आदत होती है बार बार देखने की, प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने तरफ चले जाते हैं क्योंकि अभ्यास है। यह भी नॉलेज रूपी दर्पण ने अपने स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो तो देह अभिमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही इसको ठीक कर देते हैं। वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है, इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, फिर यह मोह रहेगा क्या? और जब नष्टो मोहा हो जावेंगे तो नष्टो मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। सहज नहीं है? जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या? कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्त नहीं होते हैं। तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है? अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो। जो पाप दे सकते हैं, क्या वह यह विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकती है? जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज वह प्राप्ति नहीं करा सकी है और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती है, तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में वा ठिकाना देने वालों में? जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो बाप का भी आप आत्माओं से यही एक प्रश्न है। इस एक प्रश्न का ही उत्तर अब तक दे नहीं पाए हो। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है वह सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है वह बार बार उतरती कला में उतरते ही रहते हैं। नष्ट मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। यह तो इस हद के जिम्मेवारी को बेहद के जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो तो बेहद की जिम्मेवारी से हद के जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जावेंगी। बेहद को भूलकर और हद के जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं व कर्तव्य को संभाल रहे हैं, वह निभाना व संभालना नहीं है और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो, जो फिर वह आत्माएं भी के अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाते हैं। तो फर्ज के बजाय और ही अपने आप में भी मर्ज लगा देते हो। यह मोह का मर्ज है और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो जिसको फर्ज समझ रही हो वह फर्ज बदल करके मर्ज का रूप हो जाता है। इसलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, वाह मैं फलाने जिम्मेवारी वाली हूँ, उसके बजाय अपने मुख्य पांच स्वरूप स्मृति में लाओ। जैसे पांच मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, तीन मुख भी दिखाते हैं, पांच मुख भी दिखाते हैं। तो आप ब्राह्मणों को भी पांच मुख्य स्वरूप स्मृति में रहे तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। वह स्वरूप कौन से है? जिस स्मृति स्वरूप में रहने से यह सभी रूप भूल जावे। स्मृति में रखने के पांच स्वरूप बताओ। जैसे बाप के तीन रूप बताते हो वैसे आपके पांच रूप है। एक, मैं बच्चा हूं। दूसरा, कॉटली स्टूडेंट हूं। तीसरा, रूहानी यात्री हूं। चौथा, योद्धा हूं। और पांचवा, ईश्वरीय वा खुदाई खिदमतगार हूं। यह पांच स्वरूप स्मृति में रहे। सवेरे उठने से बाप के साथ रूह रूहान करते हो ना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना, तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूं। तो फिर गृहस्थी कहां से आवेगी? और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए। तो फिर बुद्धि यहां वहां क्यों जावेगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले की इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है। इसलिए अपने गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारे दिन में अगर यह पांचों ही रूप समय प्रति समय भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोहा नहीं हो जावेंगे? इसलिए बताया, मुश्किल का कारण यह है जो शिकल को नहीं देखते हो। तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया। रूप बिगड़ तो नहीं गया? देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्ट मोहा हो जावेंगे। समझा? अभी यह तो नहीं कहेंगे कि नष्ट मोहा कैसे बने। नहीं, नष्ट मोहा ऐसे बने। कैसे शब्द को ऐसे शब्द में बदल देना है। जैसे यह स्मृति में लाते हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर से ऐसे बन रहे हैं, तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल लेना है, कैसे बने इसके बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जावेंगे। कैसे शब्द खत्म हो ऐसे बन ही जावेंगे। अच्छा, ऐसे सेकेंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले नष्ट मोहा, सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।